आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के पांचवे श्लोक से पढ़ेंगे।
उधरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवाह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैवारिपुरात्मनः। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well.
व्यक्ति को अपने मन के द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए। मन जो है वो व्यक्ति का मित्र भी है और शत्रु भी है।
The mind is that element which stands between the soul and this world.
मन वो तत्व है जो कि आत्मा और उस दुनिया के बीच में उपस्थित है।
When the mind is pure, it is like a mirror and it reflects the true quality of the soul.
जब मन शुद्ध होता है तो वह एक दर्पण के समान होता है और आत्मा के चीजों को प्रतिबिंब करता है।
The quality of the soul is described in Bhagavad Gita.
आत्मा के गुण भगवद गीता में बताए गए हैं।
It is eternal.
वह नित्य है।
Not subject to birth or death.
वो जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता।
The soul is full of bliss.
और वो आनंद से पूर्ण है।
Because it is part and parcel of the supreme ocean of all bliss, Krishna.
क्योंकि वो जो सब आनंद के सागर हैं भगवान श्री कृष्ण उनका अंश है।
The nature of the soul is that it is meant to be enjoyed by the supreme soul, Krishna.
आत्मा का यह स्वभाव है कि वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा भोगे जाता है।
When the mind is clean, when it is pure, the mind reflects this quality of the soul, and the soul sees its natural love for Krishna everywhere it looks.
जब मन शुद्ध होता है, तब आत्मा जो है जहाँ पर भी देखता है, वो भगवान श्री कृष्ण के गुण को देखता है।
Through all of our sense perceptions, we perceive the quality of our desire to serve Krishna.
सब अपने इंद्रियों के द्वारा हम वो गुण देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना।
But when the mind is contaminated by material attachments, it is like a mirror that is covered with dust.
लेकिन जब मन भौतिक आसक्ति के द्वारा कलमुषित हो जाता है, तब वैसे होता है कि दर्पण मानो धूल से ढका हुआ हो।
When you look into a mirror covered with dust, you do not see yourself.
अगर आप उस दर्पण में देखते हैं जो कि धूल से ढका हुआ है, तो अपने आप को नहीं देख पाते।
All you see is dust.
आपको सिर्फ धूल ही दिखाई पड़ती है।
In the same way, when our mind is filled with material attachments, we cannot see our own eternal nature. We only see our material attachments.
जब हम भौतिक आसक्ति से ढके जाते हैं, तो हम अपने नित्य स्वभाव को नहीं देख पाते।
And through all of our senses, whatever we perceive, we only perceive them in such a way in how they could fulfill our material attachments.
और हम जो भी देखते हैं, हम इस तरह से देखते हैं कि कैसे हमारी भौतिक आसक्तियों को पूर्ण किया जा सकता है।
And therefore, we are in great anxiety.
इसलिए हम बड़ी चिंता में रहते हैं।
Because material attachments can never be fulfilled.
क्योंकि भौतिक आसक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती।
Why? It is simple. The soul is eternal. The soul is unlimited.
वो इसलिए क्योंकि आत्मा जो है नित्य है और असीमित है।
And it can only find satisfaction in that which is eternal and unlimited.
और उसी चीज में संतुष्टि प्राप्त कर सकता है जो कि नित्य और असीमित है।
And that is Krishna.
और वो श्री कृष्ण है।
The soul's natural desire is to find unlimited eternal pleasure in Krishna.
तो आत्मा का स्वभाव है कि कृष्ण में ही परम आनंद अनुभव करना।
But when we try to find that same pleasure within the temporary elements of this creation, we are simply frustrated.
और जब वही आनंद इस भौतिक तत्वों में रहने का प्रयास करते हैं, तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं।
We are always hankering for more and lamenting for what we cannot have, or especially for what we lose.
और हम जो इच्छा करते रहते हैं कि प्राप्त करने की और दुख करते हैं उन चीजों का जो हम खो देते हैं.
So real education does not mean teaching people more sophisticated scientific technological means by which to try to fulfill the illusions that are contaminating our mind. But real education means to understand how to engage our soul's propensities in the service of God where there is real happiness.
तो सच्चे ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि हम उस भ्रम में ही फंसे रहें, और सच्चे ज्ञान का सच्चा उद्देश्य यह है कि हम जाने की सच्चा आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं.
The education of Bhagavad Gita can bring a man to the platform of real peace.
जो आत्मा का जो ज्ञान है व्यक्ति को सच्चे शांति का मार्ग बता सकता है.
All the other forms of so-called education have never brought anyone any real peace.
और सब प्रकार की तथाकथित जो शिक्षा है उसने किसी को भी कभी सच्चे शांति नहीं प्राप्त कराया है.
But when we establish our consciousness in truth, then whatever education we may develop, if it is connected to that truth, then it can do real benefit to ourselves and to the whole world.
और अगर हम शिक्षा जो है सत्य से प्राप्त करते हैं तो हम अपना भी और दूसरों को भी अच्छाई कर सकते हैं.
There is no harm in getting a good education, providing that the foundation of that education is truth.
शिक्षण प्राप्त करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन उसका आधार सत्य होना चाहिए.
But unfortunately today, education is based on the foundation of illusion.
लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो शिक्षण है वो भ्रम पर आधारित है.
Or to say it simply, it is based on the principle of Maya.
वो माया के आधार पर आधारित है.
Maya means that which is not.
माया का मतलब जो नहीं है.
We are thinking we are this body and we are the enjoyers, but we are not this body and we are not this enjoyer. So our whole conception of reality is a lie. We are all being cheated.
हम ये सोच रहे हैं कि हम भोक्ता हैं, हम ये शरीर हैं, और ये भ्रम है, इसलिए हम धोखा खा रहे हैं.
Maya is the greatest cheater.
माया सबसे बड़े धोखेबाज है.
And she has her representatives everywhere in this world who have come to cheat us.
और उनके प्रतिनिधि पूरी दुनिया में हैं, उनको धोखा देने के लिए आए हैं.
Everywhere we look, everywhere we hear, Maya's representatives are there to try to convince us that you are your body and you are the enjoyer, and let us exploit you.
और जहाँ पर भी हम देखते हैं, उनके प्रतिनिधि बताते हैं कि आप ये शरीर हैं, आप ही भोक्ता हैं, और हम आपका शोषण करें.
The more we have material desires, the more we are attached to the pleasures of the mind and senses, the more people can exploit us and cheat us because we are vulnerable.
जितने ज्यादा हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं होंगे उतना ही लोगों को धोखा दे सकते हैं.
But if we are self-satisfied and our consciousness is established in truth, then who can cheat us?
लेकिन अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं तो कौन हमको धोखा दे सकता है?
Who can exploit us?
कौन हमारा शोषण कर सकता है?
We are self-satisfied.
हम अपने आप में ही संतुष्ट हैं.
And this is what we should all be aspiring for.
और ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए.
So Krishna in this verse is telling that we must deliver ourselves with the help of our mind and not degrade ourselves.
और कृष्णा यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें मन के द्वारा हमारा उद्धार करना चाहिए और पतन नहीं होने देना चाहिए.
Because the mind is potentially either your best friend or your worst enemy.
क्योंकि मन जो है आपका परम मित्र भी हो सकता है या परम शत्रु भी हो सकता है.
If your mind is following the dictations of your intelligence, your mind is your best friend.
अगर मन जो है बुद्धि की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा है तो आपका परम मित्र है.
If your mind is following the dictation of your senses, it is the worst enemy.
और अगर मन जो है इंद्रियों के आज्ञा पर चल रहा है तो सबसे बड़ा शत्रु है.
But what is real intelligence?
लेकिन सच्ची बुद्धि का अर्थ क्या है?
Intelligence means the word of God.
बुद्धि का अर्थ है कि भगवान के शब्द.
What is revealed through guru, through sadhu, and through shastra, that is intelligence.
जो कि गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा प्रकट होती है वो बुद्धि है.
This triangle represents the basis of truth.
ये जो त्रिकोण है ये सत्य का आधार माना जाता है.
Krishna appears in this world and speaks, and that is spoken in the scripture.
Krishna दुनिया में प्रकट होते हैं और ये शास्त्र में दिया गया है.
It is recorded by Vedavyas, the Lord Himself, within the Vedas.
और वेदव्यास द्वारा जो भगवान ही हैं उनके द्वारा ये वेदों में लिखा गया है.
And the sadhus are those great personalities who have lived by the teachings of the Vedas, realized those teachings, and preserved the true meaning throughout the ages.
और साधु वो व्यक्ति हैं जो कि उन शास्त्र के अनुसार जो है जीवन बिताते हैं, उन शिक्षाओं को साक्षात्कार कर चुके हैं और उस शिक्षण को प्राप्त करके दूसरों को देते हैं.
And the guru is that person who represents the scriptures without interpretation and is supported by the history of the previous acharyas as well as the assembly of the great Vaishnavas who are present today.
Aur guru wo vyakti hain jo ki shastra ke anusar jeevan bitate hain aur jo vartaman jo sadhu hain aur jo shastra hai unke dwara unka support hai.
If we have the help of Guru Sadhu Shastra, we have real intelligence.
अगर हमें गुरु साधु और शास्त्र का आधार है तो हम बस अच्छी बुद्धि है.
And our mind should be directed by that intelligence.
और हमारा मन उसी बुद्धि द्वारा निर्धारित होना चाहिए.
We find in Bhagavad Gita that Arjuna, although he was a man who was of such great accomplishment, he was bewildered by trying to understand what was his duty by his own intellect.
हम देखते हैं कि अर्जुन जो है कितने बुद्धिमान थे, वो बिल्कुल विमोहित हो गए जब अपने बुद्धि से कार्य कर रहे थे.
So he turned to Krishna.
जब वो कृष्ण की ओर मुड़े.
And he asked Krishna, "What is my duty?"
और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरा कर्तव्य क्या है.
And Krishna, although he is the supreme Godhead, the source of all truth, Dharmam tu sakshat bhagavat puranitam. Just to set the record proper, he quotes from what the shastras say and what the sadhus say, just to confirm that what he's speaking is correct.
और कृष्ण स्वयं भी जो है जो बताते हैं कि शास्त्र में क्या बताया गया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जो कह रहे हैं वो सत्य है.
Because he wants to establish that this principle of guru sadhu shastra is most important.
क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि गुरु साधु और शास्त्र का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है.
It is a science.
एक विज्ञान है.
It must be approached as a science.
उसको इसी रूप में जो है प्राप्त किया जा सकता है.
If you want to become an engineer or an architect or a doctor, you must go to the proper professor who is a guru. He has to be in a line of previous professors from whom he was trained by. They are the sadhus. And you have to study under the authorized textbooks, which are the shastras.
अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उन प्रोफेसर के पास जाना चाहिए जो कि गुरु हैं, और उनको दूसरे प्रोफेसर का जो है सपोर्ट होना चाहिए जो कि साधु हैं, और उनकी पुस्तकें हैं जिसको कि शास्त्र कहा जाता है.
In any important subject of education or science today, this idea of guru sadhu shastra is there.
आजकल के जो आधुनिक शिक्षण पद्धति है उसमें कोई महत्वपूर्ण विषय में जो गुरु साधु और शास्त्र का जो है सिद्धांत देखा जाता है.
That is where we gain authority.
उसी से हमें अधिकार प्राप्त होता है.
But in the highest realm of truth, guru sadhu and shastra is in the science of self-realization.
और सबसे ज्यादा जो है वो गुरु साधु और शास्त्र जो है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में देखा जाता है.
And when Arjuna heard from Krishna, he became enlightened.
और जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से श्रवण किया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ.
And when we hear from Krishna, we will become similarly enlightened.
और जब हम कृष्ण से श्रवण करते हैं तो हम भी उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे.
Because Krishna is speaking to us as directly as he spoke to Arjuna every time we read Bhagavad Gita or hear the narration of Bhagavad Gita. If we are simply in the same consciousness as Arjuna.
और कृष्ण भी हमें जो है बोल रहे हैं जिस तरह उन्होंने अर्जुन को बोला था, जब हम भगवत गीता के वचनों को सुनते हैं, अगर हम उसी चेतना में हैं जिसमें अर्जुन थे.
What was Arjuna's consciousness?
Arjuna ki chetna kya thi?
He approached Krishna, Karapanya doso pahata svabhava prichchami tvam dharma samudacaya. That Krishna, I think I know everything, but actually I know nothing. About the highest truths of lives, I am a fool. Please instruct me.
उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं सोचता हूँ मुझे कुछ मालूम है लेकिन वास्तव में मुझे कुछ मालूम नहीं है मैं एक मूर्ख हूँ कृपया मुझे ज्ञान दीजिए।
Arjuna was humble and submissive.
अर्जुन जो है नम्र थे।
थाद्विदी प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्व दर्शनः। Krishna says that we should approach a guru and we should approach in a humble state of mind and inquire submissively with a desire to follow those instructions by rendering service.
Krishna Bhagavan batate hain ki hame guru ke paas jana chahiye aur namrata purvak prashna puchna chahiye aur sath mein seva karni chahiye.
If we hear Bhagavad Gita in this way, then Krishna will directly, through parampara, speak to you and enlighten you.
अगर हम इस तरह से कृष्ण से जिज्ञासा पूछते हैं तो फिर कृष्ण जरूर परंपरा के द्वारा हमें ज्ञान देंगे
and your life will be transformed.
और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा
from material to spiritual.
भौतिक से आध्यात्मिक
from misery to bliss.
दुख से आनंद
from the temporary to the eternal.
और अशाश्वत से शाश्वत.
This is the effect of hearing the ambrosial nectarine words of Lord Krishna.
ये प्रभाव है भगवान के अमृतमय वाणी का श्रवण करने से.
There is a beautiful story when Lord Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, not long before he came to Kolhapur.
ये एक बहुत सुंदर कहानी है जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे कोल्हापुर आने से कुछ ही समय पहले.
During the Chaturmasya time. The rainy season, which appears to be today, Lord Chaitanya, in those days, Hare Krishna, in those days when sadhus would travel, they would not travel during the rainy season. They would stay in one place.
उस जमाने में जब साधु भ्रमण करते थे तो बरसात के मौसम में भ्रमण नहीं करते बल्कि एक ही स्थान में रहते थे।
Because they didn't have automobiles or trains or airplanes, they walked wherever they went.
उस समय बस कार, ट्रेन या एरोप्लेन वगैरह नहीं होते थे, वो चलकर जाते थे।
So it is very difficult.
तो बहुत मुश्किल होता।
So for this 4 months he stayed in Srirangam.
4 महीने के लिए वे श्रीरंगम में रहे।
And there was one Brahmin who was living in Srirangam, and every day he would read all 700 verses of Bhagavad Gita.
एक ब्राह्मण जो श्रीरंगम में रहता था और हर रोज वो गीता के 700 श्लोक का अध्ययन करता.
And there were so many great scholars of the Vedas.
और कई वेदों के बड़े विद्वान वहाँ पर थे.
And they were very dissatisfied by hearing him speaking Gita.
और वो बहुत असंतुष्ट थे उनके पढ़ने से।
Because he was not very learned.
क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान नहीं थे।
And he was not able to properly pronounce the slokas.
और वो ठीक से श्लोकों का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे।
You noticed I even had problem pronouncing one word of this sloka today.
आपने शायद देखा होगा मुझे भी तकलीफ हो रही थी एक शब्द का उच्चारण करने में।
So this story will give me some hope. So this Brahman, even though I memorized this sloka many years ago and I could say it, but when I try to read it, then I become like this. What is that? Very well. Very nice. Those Hare Krishnas are always disturbing us with their loud chanting.
Hare Krishna ji hamesha hamari kirtan mein disturb karte
hain. Now we know what it's like.
Hare
these scholarly Brahmins, they were so much disturbed and upset. They would tell him that you are just a fool.
विद्वान ब्राह्मण इतने ज्यादा परेशान थे, बोले आप तो मूर्ख हैं.
Sometimes they would criticize him, sometimes they would laugh at him.
कभी-कभी वो उनकी निंदा करते, कभी उनका उपहास करते.
But he continued reading Bhagavad Gita every day.
लेकिन वो अपना जो है रोज गीता पढ़ना जारी रखे.
So one day Lord Chaitanya Mahaprabhu came into that courtyard.
एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उस आंगन में पहुंचे.
And he saw the Brahmin reading Gita, and tears were coming out from his eyes. And Lord Chaitanya asked, "Can you tell me what is it you are doing?" The Brahmin was very honest. He was not trying to present himself as something he was not.
वो अपने आप को ऐसा प्रस्तुत नहीं कर रहे थे जो कि वे नहीं थे.
Actually, Srila Prabhupada told us we should preach according to our realizations.
प्रभुपाद बोलते थे अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए.
We should not try to present ourselves as great Mahatmas.
अपने आप को बड़े महात्मा के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए.
We should present ourselves as the insignificant, humble servant of the great Mahatmas.
हमें ये समझना चाहिए कि मैं सिर्फ बड़े महात्माओं के दासों के दासों का दास हूँ.
In this way, we should try to live by the teachings of our guru, and we should try to repeat the words of our guru in a very honest and humble way.
तो हमें नम्र भावना से गुरु महाराज की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए और वही शिक्षा को पेश करना चाहिए.
So this Brahmin said that actually, I do not hardly know reading.
ब्राह्मण बोलेगा कि मैं तो वास्तव में ठीक से पढ़ना भी नहीं जानता.
I am reading every day, and it takes me so long, and sometimes I do not even know what I am reading.
मैं रोज पढ़ता हूँ, मुझे इतना समय लगता है, पर मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ.
And whether I read correct or incorrect, I know not the difference.
और मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे अंतर भी नहीं पता चलता.
But my Guru Maharaj, he has told me that you read the entirety of Gita every day.
लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि आप संपूर्ण गीता रोज पढ़िए.
And whether these people laugh at me or criticize me or think I'm the greatest fool, that is not important. But that I am satisfying my guru by carrying out his instruction, that is important.
और चाहे लोग मुझे हंसे या मुझे मूर्ख कहें, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने गुरु के आज्ञा पालन करूं, यह महत्वपूर्ण है.
Such humility and such a desire to serve, that was his quality.
यह नम्रता और यह सेवा करने की भावना, यह उनका गुण था.
And Lord Chaitanya inquired, "What is it that brings so much ecstasy into your heart?"
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इतना आपको आनंद कैसे हृदय में प्रकट हो रहा
है. He said, "When I am reading the Gita, I am seeing this beautiful picture in my mind of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who has a beautiful, beautiful blackish complexion, and who is driving the chariot of his own devotee Arjuna."
मैं जब गीता खोलता हूँ तब मैं देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और वो जो है अर्जुन का रथ हांक रहे हैं.
And this beautiful form and the great mercy of the Lord transports my heart into ecstatic love.
और इस सुंदर रूप को देखकर मेरा हृदय जो है भाव विहल हो जाता है.
And Lord Chaitanya recognized, because he was hearing the Gita with such devotion to his guru and such humility, Krishna had revealed all the truths of the Gita to him.
चैतन्य महाप्रभु समझ गए क्योंकि वो इतनी नम्रता से गुरु के आज्ञा पालन कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको सारे गीता के सत्य जो है प्रस्तुत कर दिए थे.
And Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced him.
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिए.
And upon that embrace, he was infused with ecstatic love for Krishna.
और गले लगाने से उनके अंदर भगवान के प्रति जो है भाव प्रेम प्रकट हो गया.
something that was never attained by all the other great, great learned Sanskrit scholars and pundits. Because he had submissive humility and a desire to serve. So this is real education, and this is the proper frame of mind by which we can understand the subject of the Absolute Truth. Is there any questions?
Yes. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हाँ मंत्र सरल आसन उल्टा कैसा क्या मिला था तो?
He is asking the original mantra is Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Why do you chant in a different way? इनका प्रश्न है कि हरे राम पहले होता है तो आप हरे कृष्ण पहले क्यों?
We can explain it in several ways.
उसको कई तरीके से हम समझा सकते हैं.
But one is this.
इसमें से एक ये है.
That the Shastra is spoken by God.
शास्त्र जो है भगवान की वाणी है.
The Shastra is not written by man.
वो व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं.
It is the word of God.
भगवान के शब्द हैं.
So the Shastras declare that in this age of Kali Yuga, God comes in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं.
कृष्ण वर्णम विसा कृष्णम संगोपंगश पारशनम जो ज्ञाय संकीर्तना प्रया ये जानती ही शिवैरिषा. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he spoke directly and specifically what was the conclusion and the essence of the Shastra.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सीधे वही चीज बताई जो कि सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है.
And according to the Kali Santarana Upanishad, this particular mantra, Iti Shodashakam Nam Nam Kali Kalmasha Nashanam Nataparatayo Charva Sarva Vedeshu Drishyati. This Hare Krishna Maha Mantra, there is no better medicine, there is no powerful means of purifying the heart in this age of Kali Yuga than the chanting of Maha Mantra.
इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई दवा नहीं है शुद्धिकरण के लिए.
So Chaitanya Mahaprabhu personally chanted and instructed in this form, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Chaitanya Mahaprabhu ने बताया कि इस तरह से गाना चाहिए पहले हरे.
If you are the author of the Vedas, you have a right to make such an adjustment. If you are not, you have no right.
अगर आप वेदों को खुद ही लेखक हैं, तो आपके पास अधिकार है कि उनको बदलने का एडजस्टमेंट करने का. लेकिन नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं.
It is not a change.
ये कोई परिवर्तन नहीं है.
Chaitanya Mahaprabhu is the author of all the Vedas, so he has the right to make such an adjustment.
Chaitanya Mahaprabhu सारे वेदों के लेखक हैं, इसलिए उनके पास ये अधिकार है कि वो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सके.
And if you chant 2 times the mantra, then you will not know where it begins and where it ends.
अगर आप दो बार गाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरू कैसे हो रहा है और अंत कैसे हो
रहा. But Lord Chaitanya Mahaprabhu understood what is the necessity in this age of Kali Yuga for bringing out the clearest understanding of the Absolute Truth.
श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि क्या चीज आवश्यक है कि परम सत्य को इस कलयुग में पेश करने के लिए.
Because the name Hare is a name for the pleasure potency of the Lord.
हरे जो है वो भगवान की जो है आनंददायी शक्ति है.
And the name Rama simultaneously is the name of the Lord in many forms.
और ये राम जो भगवान का नाम है, भगवान के अनेक रूपों का नाम संबोधित करता है.
Not far from here, there was a great sage that lived named Jamadagni.
यहाँ से पास में एक स्थान है जहाँ पर एक बड़े संत रहते थे जिनका नाम है जमादग्नि.
and his wife's name was Renuka.
Unki patni ka naam Renuka tha.
And they had a very special son named Parasuram.
Aur unke ek bahut vishesh putra tha jinka naam tha Parasuram.
You know the story.
Aap ye kahani jante
honge. He was a Brahman.
Woh Brahman the.
But Kartavirya Arjuna, who was a Kshatriya, stole the Kamadhenu cow from his father and even killed his father.
Kartavirya Arjuna ne jo hai unke pitaji se gaay chori kar li aur unka vadh kar diya.
So Parasuram, by his mystic powers, brought his father back to life, but he destroyed Kartavirya Arjuna, all his sons, all his soldiers, and then he went and destroyed all the Kshatriyas in the world.
और परशुराम जितने योगी शक्ति थे उन्होंने अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया और कार्तवीर्य अर्जुन और उनकी सेना और सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया.
So he is an avatar of Lord Vishnu, Lord Krishna.
वो भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार माने जाते हैं.
But in the Shastras, he is generally referred to by the name Ram.
शास्त्रों में उनको राम कहकर संबोधित किया जाता है.
When Jamadagni's head was cut off by Kartavirya Arjuna, Renuka, the mother, called out, Rama, Rama.
जब उनके पिता का वध हो गया तो रेणुका ने बुलाया राम राम.
And he immediately appeared.
और तुरंत प्रकट हो गए.
So Rama means Parasuram.
राम का अर्थ है परशुराम.
And also the son of Dasarath was named Ramchandra.
और दशरथ नंदन को भी रामचंद्र जी कहा जाता है.
And he was also called upon by the name Rama.
उनको भी राम कहकर संबोधित किया जाता है.
He appeared to kill Ravana.
उन्होंने उनका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ.
And also the elder brother of Lord Krishna, his name was Balaram.
और कृष्ण के बड़े भाई का नाम भी बलराम.
And if you read Srimad Bhagavatam, generally when Rohini or Jashoda called out for Balaram, they called out Rama, Rama. So Rama means Balaram. And Dasarath Suta Ram. And Renuka Suta Ram. But also Rama means Krishna.
Aur Ram ka ek arth Krishna bhi hai.
Radharaman.
Radharaman.
As Radharaman, he is also called Rama.
Radharaman ke roop mein bhi unko Ram bulaya jata.
Because he is the giver of pleasure to Radha.
Kyunki woh Shrimati Radharani ko anand dene wale.
For a fact, because he gives pleasure to all living entities, Krishna's name is Ram.
Aur woh sab jeevon ko anand dene wale hain, isliye unka naam Ram.
So the name of Ram includes all of these great avatars.
So ye Ram jo naam hai, isme sare avatar aa jate hain.
But according to Srimad Bhagavatam, it describes all these great incarnations, but in the end it says, Ete chang shakala pungsha krishnastu bhagavan swayam. That of all the incarnations, Krishna is the source, the original personality of Godhead, and from Krishna all other incarnations are coming.
Srimad Bhagavat ke anusar, jahan par sare avataron ki suchi di gayi hai, wahan par kaha hai ki Krishna hi sare avataron ke stotra hai.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu put emphasis, although he taught, if you worship Krishna, automatically all other avatars, all other demigods, everything is included in Krishna, because he is the fountainhead, the source of everything that exists.
और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि अगर आप कृष्ण की आराधना करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, सारे देवता सारे अवतार आ जाते हैं क्योंकि वो सबके स्त्रोत्र हैं.
So to make it clear that he was worshipping Krishna, in every word of the Maha Mantra, he began with Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
और इस बात को साफ जाहिर करने के लिए कि वो कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह से मंत्र.
He did this out of an expression of his own ecstasy, because he had the heart of Sri Radharani, and Radharani naturally chants the name of Krishna.
उनके अंदर कृष्ण राधारानी के भाव थे और राधारानी स्वाभाविक रूप से कृष्ण का नाम लेते हैं.
And also out of great mercy upon all of us.
और हम सब पर जो है महान कृपा करते
हैं. To give us entrance into the highest conception of Godhead.
हमको सबको भगवान के सर्वोच्च सिद्धांत में प्रवेश दिलाने के
लिए. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम.
और किसी को कोई प्रश्न है स्टूडेंट्स?
पण असा जप करत चालतोय ना, राम 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 हरे हरे हरे,
सपोज आय चॅन्ट द अदर वे, इज
दॅट ऑल राईट? इट इज ऑल राईट. Not only all right, it is wonderful.
बहुत सुंदर.
त्या देवापैकी कोणी कुणाला मानतो काय तरी करतो ज्यांना माहित नाही ती वस्तू आता तो प्रत्येक भक्तीत आपला लीन असतो. प्रत्येक भक्ती करत असणार कृष्णा किंवा गणपतीची किंवा आणि करतात तर हे करत असताना त्याची काय त्यात चूक आहे की ज्याला ईश्वर माहितीच नाही तो ज्या ज्या मार्गाने जातो.
He is asking that there are 33 million demigods and everybody is worshipping different according to their faith. Somebody is worshipping Ganesh, somebody is worshipping Krishna. Like so what is his fault? He is doing it. He is just doing their worship. So what is wrong? He doesn't know what is the Supreme Personality of Godhead. So what is his mistake?
We must understand from Shastra. We cannot just dedicate our lives to our own conceptions.
हमें शास्त्र से समझना चाहिए, अपने स्वयं के जो सिद्धांत से नहीं.
Bhagavad Gita is accepted by all the acharyas as the basic, most important, fundamental understanding of truth.
भगवद गीता जो है सब आचार्यों के द्वारा स्वीकारा गया है, यही सबसे मूलभूत शास्त्र है.
There Krishna says, Aham sarvasya prabhavam mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita kamaishthasthaya hrithya jnana prapadyante nyate vata. He explains that he is the source of everything. He is the source of all the devatas. All the 33 million devatas. And whatever powers the devatas have, they are getting from Krishna. And the Bhagavad explains, if you water the root of the tree, automatically every leaf, flower and branch of the tree is nourished. In the same way, if you water, if you offer seva and worship to the root of all existence, Krishna, then all the demigods, the 33 million demigods in the forms of the roots and the, the twigs, the leaves and the flowers, they will all be satisfied. Devarshi bhutapti nirnam pitranam na kinkaronayam rini charajan saravatmana yasharada sharanyam kathomukundam paridipti karatam. That if you worship Mukunda, Mukunda means Krishna, the giver of liberation, then all your responsibilities and all your obligations to all the demigods, all the devas, all the rishis, all your forefathers are all fulfilled. Generally, people worship demigods because they want material gifts from them.
अधिकतर समय जो है लोग देवताओं की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं.
Demigods can give material gifts.
वे भौतिक भेंट दे सकते हैं.
But those gifts that they give will be a source of misery for you because they are temporary.
वो जो चीजें देते हैं वो दुख के स्रोत होंगे क्योंकि वे क्षणिक हैं.
But if we worship Krishna, we can get the supreme gift.
और अगर कृष्ण की आराधना करते हैं तो आपको परम भेंट मिल सकती है.
We can get ecstatic love of God and promotion to the spiritual world.
भगवान का प्रेम और आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान प्राप्त है.
Is there another? We can, one person.
और किसी भी जनाब नहीं पूछा.
Devotee would like to just come up and offer respects and talk to you.
Any more questions?
सामान्य जीवन जगत असताना माणूस किंवा अति उच्च कोटीचं जीवन जगत असताना सुद्धा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ह्या मंत्राचा जप केल्यानंतर त्याच्या जीवनामध्ये त्याला वर्तमान काळात काय फायदा होणार आहे?
That you will learn what life is.
आपको ये पता चलेगा कि जीवन क्या है ये पता चलेगा.
At this time we are all dead.
अभी तो हम मरे हुए.
In the sense that we are identifying with this material body. And the body is dead. Your body is not alive. Your body is dead. Is your automobile alive or dead? It is dead. But when you're driving the automobile, then it can move. But you're making it move. The automobile is not moving. You're seeing through the windshield. Your eyes are like a windshield, but your soul is seeing through the eyes. Your legs are like the wheels, but you're moving the wheels. Your voice is like the horn. But you, the soul, is pushing the horn. In India, people like to push their horns. Nowhere else in the world do I see like this. So your body is dead, but the soul is the living force within the body.
आपका शरीर मृत है लेकिन आत्मा जो है जीवन शक्ति है जो कि शरीर को चला रही है.
And when the soul leaves the body, the only difference between the living body and the dead body is the soul has left.
तो जीवन जो शरीर है मृत में अंतर यही है कि आत्मा चली गई है.
So at this time in our lives, we are thinking we are this body.
हम इस समय सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं.
We have forgotten our real life,
हम अपने सच्चे जीवन को भूल गए,
which is spiritual.
वो आध्यात्मिक है.
Spiritual means eternal, full of life is eternal, full of knowledge and full of bliss.
जीवन का मतलब है नित्य आनंद से पूर्ण और ज्ञान से पूर्ण.
All life is eternal, full of knowledge and full of bliss.
सब जीवन जो हमेशा नित्य और ज्ञान और आनंद से पूर्ण.
The soul in the heart of every living being is eternal, full of knowledge and full of bliss.
हर एक शरीर में जो आत्मा है वो हमेशा जो है नित्य है और ज्ञान से पूर्ण आनंद.
Anywhere or anything where you see there is life, you should know that life is eternal, full of knowledge, full of bliss. But the bodily vehicle it is in is temporary. So the chanting of Hare Krishna in this very life will give us a realization of what life is. It is our true identity that we are alive. And life is eternal, full of knowledge and full of bliss. Until we come to that realization, we are worse than dead. From the spiritual sense. Yes?
What is meant by soham?
What is the meaning of soham? Soham chart.
Soham.
Soham.
I am that.
Main wahi hu.
The meaning of soham is interpreted in different ways by different philosophers.
Alag-alag darshanik iska alag-alag roop mein prastut karte hain.
Some people are under the mistake that soham means I am God. But that is not so. Soham means that I am that spirit soul.
Soham ka artha hai ki main ye atma hu.
Aham brahmasmi. I am spirit. I am eternal.
Main atma hu, main nitya hu.
But then we have to understand what is the nature of that spirit. Krishna says, Mamaivam so jivaloke jivabhuta shanatana. That we are all part of God. We are all meant for the service of God. We are all meant to enjoy the ultimate ecstasy of loving God. That is the higher understanding of soham.
Yes. Sustainer, the sustainer and the permitter. Paramatma jo hai, wo bhokta hai aur anumanta hai, ye hum kaise samajh sakte hain?
Say those three again.
Bharta, that is maintainer, and Bhokta, enjoyer, and Maheshwar, proprietor, and Anumanta, witness, these are four.
How to understand it?
Yeah.
If you study Bhagavad Gita carefully, and if you serve devotees humbly, and you chant the holy names of the Lord attentively,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Then you will understand. The Supreme Personality of Godhead. And everything within this entire creation is working by his, under the influence and control of his various energies. Therefore he is in truth the creator, the maintainer, and the destroyer of everything. Brahma, Vishnu and Maheshwar are his deputed agents within this particular universe for the purpose of creation, maintenance and destruction. But beyond that is the Supreme Absolute Truth, Krishna. So therefore everything, as the Paramatma, he is within every living being's heart as the witness. Through his creative potency, everything is being born. Through his sustaining potency, everything is being sustained. And being situated in everyone's heart, he knows everything past, present and future, and he knows every living being. So this is a theoretical explanation. But through studying Gita carefully, you can get a very, very deep, profound understanding. And by chanting Hare Krishna and serving Vaishnavas, then we can have realization, experience of these truths. And those realizations will carry us across the ocean of suffering. And bring us to that distant shore of eternal happiness. Thank you very much.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Jai. Jai.